नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद शक्ति।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा, हरमनप्रीत कौर के हाथों में टीम की कमान। बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान किया, सूर्य कुमार यादव बने भारतीय टीम के कप्तान। निशानेबाज मनु भाकर ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जबकि रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और डूरन कप के पहले सेमीफाइनल में शिलोंग लांजोंग एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच मुकाबला जारी। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा हो गई है। महिला ब्रिगेड की कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
इंग्लैंड की सरजमीं पर पहले एक दिवसीय फिर टी20 में मेजबान को धूल चटाने के बाद अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की निगाहें अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने पर है। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी, वहीं बल्लेबाजी क्रम में स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल और जेमिमा रॉड्रिक्स शामिल है। ऑलराउंडर के रूप में हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और अमनजोत कौर को टीम में मौका मिला है। यास्तिका भाटिया और ऋचा घोष विकेट कीपर की भूमिका में देखेंगी। वहीं टीम की गेंदबाजी क्रम की जिम्मेदारी रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, राधा यादव और श्री चरनी के ऊपर होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 सितंबर से 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होगी, जिसके ठीक बाद 30 सितंबर से विश्व कप का आगाज होगा, जिसके पहले ही दिन भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये दोनों ही प्रतियोगिताएं भारत में खेली जाएंगी। ऐसे में भारतीय महिला टीम को उम्मीद होगी कि वो श्रीलंका और उसके बाद इंग्लैंड में किए अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए पहले ऑस्ट्रेलिया को मात दे और उसके बाद भारतीय महिला के टीम में विश्व कप के सूखे को खत्म करें। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
तो यहीं से चर्चा को शुरू करते हैं। और क्या भारतीय महिला टीम वो करने को तैयार है जो 2005 और 17 में दहलीज तक पहुंचकर नहीं हो पाया?
ये उम्मीद तो यही रहेगी, खास करके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए, जैसे कि हरमनप्रीत हैं या स्मृति हैं, क्योंकि आज जब अनाउंसमेंट हुई थी तो हरमनप्रीत ने एक इशारा भी किया था कि बहुत ही स्पेशल वर्ल्ड कप होने वाला है उनके लिए। ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। इन खिलाड़ियों के लिए ज्यादा डेस्परेशन होगी, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगला वर्ल्ड कप आते आते कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, जितने सालों से ये लोग खेल रहे हैं। और ये एक टीस मिताली राज और झूलन जैसे खिलाड़ी लेके गए हैं, तो उम्मीद ये खिलाड़ी जरूर करेंगे कि ये वो चीज ना इनको झेलनी पड़े। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता कि वेन्यूज किस तरह से होंगे। बैंगलोर का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि कहां पे मैचेस होंगे, और बाय चांस अगर किसी स्टेज पे पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ा तो भारत को ट्रैवल भी करना पड़ेगा श्रीलंका के लिए, क्योंकि वो यहां नहीं आएंगे। जो आईसीसी के साथ जिस तरह से करार हुआ है बीसीसीआई का कि एक दूसरे के जमीन पे नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट पे खेलेंगे, तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखने की जरूरत है। पर जहां तक टीम की बात है, मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस टीम इन्होंने सेलेक्ट की है एक्सपीरियंस के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से। हालांकि कुछ खिलाड़ी जरूर हैं जहां पे शायद रिसेंसी बायस आ गई है, जैसे कि खिलाड़ी बहुत अच्छी हैं क्रांति गौड़, लेकिन क्योंकि श्रीलंका और इंग्लैंड में ही उन्होंने खेला है, अभी उससे पहले वो खेली नहीं, उन्होंने डेब्यू श्रीलंका में किया और इंग्लैंड में, हालांकि वो बहुत बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की थी, हाईएस्ट विकेट टेकर थी, पर शायद उन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा रिसेंसी बायस है, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं आ पाए हैं टीम में। शेफाली वर्मा का ना होना बहुत से लोगों को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है, पर ऑनेस्टली अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो पिछले कुछ समय से, कुछ नहीं काफी समय से, शेफाली का वो प्रदर्शन नहीं रहा है जो उनसे उम्मीद की जाती है। हालांकि जब आप एक्स फैक्टर की बात करते हैं तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके होने से या तो टीम पूरी तरह से अलग लेवल पे ले जाते हैं वो गेम को, तो उस हिसाब से शायद शेफ अली का होना बेहतर होता, पर परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनकी जगह नहीं बनती थी, जैसा कि आज नीतू डेविड ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये बात सही है कि उस तरह से शेफ अली परफॉर्म नहीं कर पाई है। हालांकि वो इंडिया ए की टीम में जरूर है तो वो सिस्टम से बाहर नहीं है, पर ओवरऑल एक बैलेंस जरूर दिखता है टीम में।
बिल्कुल स्पष्ट नजर आया कि जो भारतीय टीम की परफॉर्मेंस पहले श्रीलंका में और फिर जो इंग्लैंड में देखने को मिली, चाहे वो श्री चरणी हो, राधा यादव हो, वो झलक नजर आ रही है कि विश्व कप की टीम में फॉर्म के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस बीच बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भी भारतीय पुरुष टीम का ऐलान कर दिया। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। टीम की कमान सूर्य कुमार यादव को दी गई है, वहीं उपकप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल के कंधों पर होगी।
मैन इन ब्लू एक बार क्रिकेट के मैदान पर यह बताने को तैयार है कि आखिर भारत क्यों T20 की नंबर एक टीम है। बीसीसीआई ने आज अगले महीने शुरू होने जा रहे एशिया कप के लिए टीम की घोषणा कर दी है। यूथ ब्रिगेड की कमान करिश्माई T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव संभालेंगे, वहीं इंग्लैंड की सरजमी पर अपनी कप्तानी का लोहा मनवाकर लौटे शुभमन गिल को भी पुरस्कार के रूप में T20 की उपकप्तानी सौंपी गई है। चयनित टीम में बोर्ड का संतुलन बैठाने और भविष्य की टीम तैयार करने का एक नजरिया साफ नजर आ रहा है। टीम में बतौर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को जगह मिली है। वहीं ऑलराउंडर की भूमिका में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल टीम को मजबूती देते दिखेंगे। संजू सैमसन और जितेश शर्मा को बतौर विकेट कीपर जगह मिली है। यूएई की स्पिन पिचों के रुख को देखते हुए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इस डिपार्टमेंट में अपना हाथ आजमाएंगे। वहीं अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा तेज गेंदबाजी को धार देंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से होगी, जबकि भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के साथ होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
टीम का चयन एशिया कप के लिए हुआ है, लेकिन नजरें विश्व कप में नजर आई टीम का जो विजन था।
देखिए, भारत में T20 की अगर हम सिर्फ बात करें, टेस्ट और ओडीआई छोड़ दिया जाए, तो सिर्फ T20 की अगर हम बात करें तो इतना टैलेंट है कि जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, अगर उन सबको मिला के एक 15 का स्क्वाड तैयार करें तो वो अपने आप में शायद एक बहुत ही मजबूत टीम बन सकती है। तो पर हाँ, ये टीम, इस टीम में कौन है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन हाँ, हर बारी जब चयन होता है, जैसा मैंने कहा कि इतने खिलाड़ी हैं, अगर हम एक बी टीम और सी टीम भी तैयार करके भेजें तो वो भी जीतने का दम रखती हैं। पर कुछ खिलाड़ियों के लिए जरूर आपको खराब लगता है, यशस्वी जायसवाल के लिए जैसे कि खासकर, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ओपनिंग में उनकी जगह नहीं बन पा रही थी, पर अगर शुभमन गिल को इन्होंने इंक्लूड किया है और वो एज ओपनर आते हैं तो क्या संजू सैमसन को फिर बाहर बिठाया जाएगा? 15 में है वो, 11 में उनको जगह मिलती है या नहीं मिलती है? हर्षित राणा को आपने एक ऑलराउंडर के तौर पे लिया है, क्योंकि इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा था कि जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है उसकी कमी जरूर टीम को खली थी नीचे बैटिंग के मामले में 8वें 9वें पे, पर वो उस तरह से उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रहा है कि आपको लगे कि वो श्योर शॉट आपको जिताएंगे ही जिताएंगे। अगर उनकी बल्लेबाजी उस तरह से नहीं चल पाती है तो वो 7 8 9 वाली जो जगह है वो अभी भी एक वीक पॉइंट बन के रह सकती है, क्योंकि वही उनकी बल्लेबाजी है जिसकी वजह से शायद उनको प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम में लिया गया है, प्रसिद्ध कृष्णा को स्टैंड बाइस में रखा गया है। पर अगर वो उनकी नहीं चल पाती बल्लेबाजी तो वो जो गैप है वो बना ही रहेगा। जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं वो श्रेयस अय्यर पे उठ रहे हैं, हालांकि आज अजीत अगरकर ने ये कहा कि अगर वो आएंगे तो किसकी जगह आएंगे। पर्सनली मुझे लगता है कि इस टीम में किसी की जगह उनको आने की जरूरत नहीं है। उनका जिस तरह का प्रदर्शन रहा है हर फॉर्मेट में और पिछले 1.5 साल में जिस तरह से उन्होंने किया है डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में, मुझे नहीं लगता उनको किसी की जगह आने की जरूरत है। वो अपनी जगह खुद बनाते हैं। वो किसी और की जगह आने के बजाय उनकी जगह किसी ने ली, ये कहना थोड़ा बेटर होगा। पर अब जब टीम अनाउंस हो गई है तो उम्मीद हम यही करेंगे कि जब ये खेलने जाएं यूएई में, और जो उम्मीद है लोगों की कि जीत के आएंगे वहां से, और जीतना भी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एशिया नहीं विश्व में भी कोई ऐसी टीम है जो इस वक्त T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के आसपास आती है, और एशिया में तो खैर मुझे नहीं लगता कोई बहुत आसपास, तो क्या बहुत दूर दूर तक कोई उनको चुनौती देता हुआ दिख नहीं रहा है। पर सवाल हमेशा रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडिया में क्रिकेट इतना ज्यादा है कि जो भी 15 में आएगा उसके अलावा 25 नाम ऐसे होंगे जिनके सवाल, जिनके एक्सक्लूजन पे सवाल उठते रहेंगे।
जी, हर चयन के साथ कुछ सवाल आते हैं और कुछ खिलाड़ियों के लिए अवसर आते हैं। इन सबके बीच में लोगों को उम्मीद होगी कि इन दोनों बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपना विजयी प्रदर्शन जारी रखे। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की, जहां ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली स्टार भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने आज एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्तल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जबकि रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्तल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रश्मिका ने इस श्रेणी का टीम स्पर्धा का पदक भी अपने नाम किया। उन्होंने वंशिका चौधरी और मोहिनी सिंह के साथ ये पदक जीते। उधर मनु भाकर ने फाइनल में 219.7 अंक हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया। भारत प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीत चुका है। लंबे समय से उम्मीद थी, हालांकि अगर इस प्रतियोगिता की बात की जाए तकरीबन 6 साल बाद मनु भाकर मेडल जीती हैं, और ओलंपिक के बाद लगातार शायद ऐसी किसी परफॉर्मेंस की तलाश थी।
मुझे ऑनेस्टली ओलंपिक के बाद बहुत ज्यादा उस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया भी नहीं है। एक आध वर्ल्ड कप्स में जरूर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, पर बहुत ज्यादा पिछले साल से अब तक वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि लगातार कॉम्पिटिशन्स में भाग लेती रही हैं। तो ये हालांकि उम्मीद जरूर है, क्योंकि 2 ओलंपिक मेडल के बाद हमारे देश में उम्मीदें बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं। तो ऐसे प्रदर्शन के बाद हमेशा ये होता है कि जब भी वो खेलने उतरे तो वो गोल्ड लेके वापस आए, पर स्पोर्ट्स में ऐसा होता नहीं है। उसके बावजूद ब्रॉन्ज जो है वो खराब नहीं है, वो अपना बिल्डअप चल रहा है उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप फाइनल्स की तरफ। तो मुझे लगता है कि जूनियर्स का प्रदर्शन जो है वो ज्यादा उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि उससे आपको ये समझ आता है कि अगली खेप कितनी अच्छी तरह से निकल के आ रही है, और वो मुझे लगता है कि बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था यहाँ पे।
जी बिल्कुल, इसके पहले वंशिका का नाम जो है सुरेंद्र सिंह मेमोरियल चैंपियनशिप में आया था, जब उन्होंने दिल्ली के लिए क्राउन किताब जीता था, और वाकई बहुत अच्छा संदेश भारतीय निशानेबाजी के लिए। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मंजूरी दे दी। इसके बाद अब यह अधिनियम बन गया है। इस विधेयक को 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था और 11 अगस्त को यह पास हुआ, वहीं 24 अगस्त को इसको राज्यसभा में पारित किया गया था। इस विधेयक में भारत के खेल प्रशासन में व्यापक स्तर पर सुधार का वादा किया गया है। तो एक नया खेल का खाका तैयार हो रहा है भारत में और नई समितियां बनती दिखेंगी।
बिल्कुल, और जिस तरह से 2036 के ओलंपिक्स की हम बात अगर कर रहे हैं, तो आईओसी की तरफ से जिस तरह से फीडबैक आया था पिछले महीनों में, और सरकार जिस तरह से और खेल मंत्री और खेल मंत्रालय जिस तरह से बहुत ही प्रोएक्टिव होके देश में खेलों के बारे में फैसले ले रहे हैं। बहुत सारे फेडरेशंस में बहुत सारी दिक्कतें थी, कोर्ट केसेस चल रहे थे, फैक्शंस बने हुए थे, उन सब पे बहुत तेजी से काम हो रहा है ताकि एक स्पोर्टिंग जो इकोसिस्टम है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही डिसिप्लिन्ड इकोसिस्टम तैयार हो सके। उसी तरफ ये स्पोर्ट्स बिल भी एक है, जिसमें सबसे बड़ी चीज जो है मुझे लगता है कि जो ट्रिब्यूनल बना है एक, जिसकी वजह से जो कोर्ट केसेस हैं उनमें शायद जरूर कटौती होगी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे आसान होता है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा फेडरेशन नहीं होगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कम से कम 10 या 20 केस नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इतने फैक्शंस बन जाते हैं। उन सब चीजों पे जरूर कटौती होगी ट्रिब्यूनल से, क्योंकि अब वो पहला और एक तरह से आखिरी स्टॉप होगा किसी को भी अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है तो।
जी बिल्कुल। और अब रुक करते हैं फुटबॉल का, जहां फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप का रोमांच अब अपने चरम पे पहुंच चुका है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज शिलोंग लांजोंग एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच खेला जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इस समय पहले हाफ के बाद तक 1-0 की बढ़त इस मुकाबले में हासिल कर रखी है। और बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से शुरू हो रहे पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ओमान की जगह अब बांग्लादेश और कजाकिस्तान खेलते हुए नजर आएंगे। आज जारी किए गए टूर्नामेंट के कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी गई। मेजबान भारत को चीन, जापान और कजाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि पूल बी में मलेशिया, कोरिया, चीनी ताइपे और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। और श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। उत्तरा जी, आप स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पे आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।